ओम शांति। अभी भी सब नहीं बोल रहे, नाश्ता करके नहीं आए? अच्छा अच्छा, तो ओम शांति। अच्छा सभी सुन रहे हैं? हाँ नहीं, नहीं नहीं सुन रहे। देखो मैं सिद्ध करके बताता हूँ कि सुन नहीं रहे। हाँ सिद्ध करके बताऊ कि मान गए? कुछ भी नहीं बोलते, जो करना है करो ऐसे। ओके हाँ देखो आप सुन नहीं रहे हैं, मेरे मुझे ध्यान से सुनना। राइट हाथ को ऐसे करो, राइट हाथ की उंगली को देखते रहो, राइट हाथ की उंगली को देखते रहो, उंगली को दाढ़ी पे लगाओ। क्या कर रहे? बहुत लोग नाक पे लगा रहे, क्यों क्यों? हाँ क्योंकि मैंने लगाया बरो, तो क्या है कि देख रहे परंतु सुन नहीं रहे। सुनना भी पड़ेगा नहीं? और ये जो अभी आज का टॉपिक है ना, बहुत सुनना है इसमें। तो सचमुच जिन्होंने भी टॉपिक चुना है ना, बहुत अच्छा है। इसमें कहेंगे कि सारा साइकोलॉजी का एसेंस है, अगर अच्छे से बताना हो तो ऑलमोस्ट दो दिन का फुल डे का सेमिनार हो सकता है, इमोशनल हीलिंग। क्योंकि अल्टीमेटली सारे इमोशंस ही है ना? तो इसलिए तो ध्यान से सुनना ना? और आपको समझ में आए तो गर्दन भी हिलाना, तो मैं भी समझूंगा कि समझ रहे। कोई अच्छी बात हो ऐसे तो ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है। लेकिन तो भी ताली क्यों बजाने की पता है बीच बीच में? क्योंकि थोड़ी देर में ही मेरा आवाज है ना, मां की लोरी बन जाएगा। हाँ फिर आपका आवाज उनको जगाएगा। चलो सोएंगे नहीं भी, कोई कह सकते भी हम सो नहीं गए, परंतु मन यहां वहां भाग जाएगा कि भी माउंट आबू कब जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा आवाज होना चाहिए। मैं कुछ पूछूंगा अभी तो यस नो जो भी है जरूर जवाब देना है ना। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हंसना आता है? आता है हंसना? आप प्रूव करके बताओ। देखो 25% ही है ना हंसना आता है। तो हंसना है तो इसलिए कि थकावट दूर हो जाए, और दूसरा वो भी कारण कि वो बाजू वाला जाग जाए, है ना। एटलीस्ट अटेंशन यहां आए कि भी अभी हम यह सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इमोशनल हीलिंग है ना, तो इसको प्रैक्टिस करना है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। उसको फील भी करना है। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो भी करना है। तो सचमुच इससे आप देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत पावरफुल चीजें मुझे समझ में आ गई। तो सबसे पहले इमोशन जो शब्द है ना, कहते इमूवर से बना है, कि जिसका मतलब है एनर्जी इन मोशन। इमोशन में बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। देखो तीन शब्द है, एक है थॉट, दूसरा है फीलिंग्स और तीसरा है इमोशन, ठीक है ना। तीनों ऐसे सिमिलर लगते, पर उसमें भेद क्या है कि थॉट में पावर कम है। पता है ना सारे दिन में कितने विचार करते हैं, तो विचार आते जाते अभी भी आप हजारों विचार कर लेंगे एक डेढ़ घंटे में, परंतु तो नॉर्मल है, उसमें शक्ति नहीं है। फीलिंग में थोड़ी शक्ति है, है ना। सब ट्रांसपोर्ट से ना सब सिंगल इंजन लगाया हो, और इमोशन मतलब उसमें और भी एनर्जी है, डबल इंजन लग गया। तो इसलिए इमोशंस में जबरदस्त शक्ति है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा, एक कॉमनेस्ट शब्द जो हमारा यूज हुआ है वह है स्ट्रेस। देखो ना बच्चे भी जैसे बताएं, बस एक बार हम मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, और आज भी जैसे मैं जल्दी आ गया ना, एक आदत ही है कि भी पहले जल्दी से पहुंच जाओ वहां पे और सेटल हो जाओ। आप लास्ट मोमेंट जाएंगे, दौड़ा भागी होगी तो उल्टा फिर टेंशन होगा, है ना। तो वहां भी हम लोग पहले ही पहुंच गए थे और वहां बैठ गए थे, कोई बात नहीं। तो ना कुछ स्टूडेंट्स आए और बोलने लगा कि आप स्पीकर है? मैंने कहा हाँ। तो कहते आज आप हमको स्ट्रेस पे बताने वाले। बोले टॉपिक कुछ और था, टॉपिक स्ट्रेस का नहीं था। तो इसलिए स्ट्रेस बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है। आज मुझे आश्चर्य होता है कि भी 4 साल का बच्चा बोलता है मुझे बहुत टेंशन है। तो इसलिए अब ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस करता क्या है? और जब प्रेजेंट स्ट्रेस का मैं आपको बताता हूं कि जो इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, स्पेशली नेगेटिव इमोशन, कि अगर आप सचमुच देखो आज से 300 साल पहले, दैट एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे से बहुत ज्यादा थे उनके। उनको छोटी छोटी बातों के लिए क्या समस्या आई थी? मुझे याद है हम हमारे गांव में जाते थे छोटे थे तो पानी भरना है तो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर जाना है, वहां से पानी भरना हम सबकी ड्यूटी लगती थी कि भी पानी भर के लाओ। अभी बच्चे थे हम तो तब जीवन, ये तो अभी की बात है, 200-300 साल पहले कैसे होगा, है ना? तब भी समस्याएं थी, जैसे भी जंगली जानवरों की समस्या थी, है ना? कोई दुश्मन आ जाए उससे लड़ना पड़ता था, परंतु वो क्या था पता है? वो कभी कभी होता था कि भी एक बार शेर आ गया आपको भाग बहुत 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 भागना पड़ा, फिर रिलैक्स हो गए। तो और उसके लिए जो भी आप नाम दो, कहेंगे कि भी नेचर ने हमें एक पूरी सिस्टम दी कि जिससे हम उससे फाइट कर सके या भाग सके अपने आप को बचाने के लिए, राइट? आज देखो तो वो सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक प्रकार से भी ऐसा हमको भागना नहीं है, परंतु आज भी स्ट्रेस है। पहले तो शेर है ना 2 साल में एक बार आता था, अभी बॉस रोज आ जाता है, हंसते भी नहीं है, सबके बॉस को है ना, अभी बॉस डेली है आपके सामने, वो भी एक शेर है, हस्बैंड या वाइफ भी शेर है, उसका रोज सामना करना है हमें। तो अब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम पहले 2-3 महीने में एक बार एक्टिव होती थी, आज डेली एक्टिव होती है, और कुछ लोगों को तो दिन में 2-4 बार वो एक्टिव होती है। तो फिर इसके कारण सारी समस्या होती है, ये ना चेन ऑफ रिएक्शन क्रिएट करता है पूरा। और ये न भी हो, चलो कोई कहेगा ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में, तो भी आज जो हमारे टेंशन्स है ना, वो कहेंगे सारी गुप्त है। अभी अभी मैं बॉम्बे में रहता हूं, चर्चगेट में जो वेस्टर्न रेलवे का वो मेन बिल्डिंग है, शायद हेडक्वार्टर क्या है पता नहीं, तो हमारे अनिल भाई है, उनको बहुत मदद करते हैं ऐसे। तो जब भी रिजर्वेशन चाहिए ना तो अनिल भाई को बोल दो, हो गया काम, है ना? हमारे स्टाफ को भी मालूम है कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना, अनिल भाई ने आप सभी जो रेलवे में है ना उनसे अच्छे कॉन्टेक्ट बनाए। तो थोड़ी हाँ, तो वो भी मुझे साल में एक बार बोलते कि भी हमारे इम्प्लॉयज को आकर के आप कुछ लेक्चर्स दो, और मैं भी चला जाता हूं क्योंकि उनकी हेल्प लिए उनको देना पड़ेगा। तो अभी थोड़े समय पहले ही हुआ था एक लेक्चर, फिर जब वापस आना था ना मैंने सोचा कि भाई रोड आऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे, ट्रेन में 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला मैं ट्रेन में ही जाता हूं, है ना? तो उन्होंने मुझे गार्ड के डिब्बे में ही बिठा दिया, ये तो पहचान थी, कहा इनको लेके जाओ वहां बोरीवली में छोड़ देना, है ना? फिर हम लोग बात करने लगे, है ना? पावरफुल मैसेज है कि वो पूछते रहे मैं क्या कर रहा हूं आदि आदि। फिर ऑलमोस्ट आई जोगेश्वरी से आगे गए ना, तो जो भाई थे उनको भी मालूम था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर एक बात बताओ। मैंने बोला बताओ। उन्होंने कहा जो आपका विषय ना सारा टेंशन एक ही बात का है। उन्होंने जो कहा सचमुच उसमें एसेंस है। उन्होंने कहा सारा टेंशन जो है ना वो एक्सपेक्टेशन का है, और सच है कि आप एक्सपेक्टेशन को हटा दो तब स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और आप कहेंगे कैसे हटाए, मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे हटाए। तो वो चेन ऑफ रिएक्शंस क्रिएट करता है। अब थोड़े मतलब मैं आपको साइंस भी पूरा, ये साइंटिफिक है, इसमें एक भी चीज साइंस के अलावा मैं नहीं बोलने वाला कि स्टीरॉइड्स आप सबने सुना है। ये लोग पूछते भी हमको भी, आपकी दवा में स्टीरॉइड तो नहीं है, है ना, वो बुरे होते। परंतु ऐसे तो आप पूछते हैं कि भी स्टीरॉइड तो नहीं है, परंतु आप ये टेंशन लेके स्टीरॉइड्स को बढ़ाते हो। वो जो स्टीरॉइड्स है ना, वो हाई लेवल जो है वो इयोजिनोफिल्स, अपनी एक फाइटिंग मैकेनिज्म है। जैसे भी हर एक देश की आर्मी होती है ना, जो अच्छी होनी चाहिए। अब देखो भारत का भी डिफेंस का बजट बहुत बड़ा है, दोनों ओर से दुश्मन से घिरे हुए तो हमारे सब में भी एक फाइटिंग मैकेनिज्म कुदरत ने दी है। टेंशन से जो कोर्टिसोल बढ़ता है, जो इयोजिनोफिल्स और लिम्फोसाइट, आप सीबीसी की टेस्ट कराते हैं ना, उसमें सब आता है, उसको लो कर देता है। और डिफरेंट मैकेनिज्म्स है कि जिससे आपका ये जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाता है और फिर आप बीमार हो सकते हैं ना, बहुत सारी वह बीमारियां लाएगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत अलग अलग रीति से समझा सकते हैं कि भी स्ट्रेस कैसे हमें हानियां पहुंचाता है, इवन स्पेसिफिक बीमारी भी करेगा। इस पर भी मैंने काफी रिसर्च की है कि कौन सा इमोशन कौन सी बीमारी लाएगा, जैसे भी एंगर से क्या होगा, है ना, जेलसी से कौन सी बीमारी आएगी। बट स्टिल वो 100% नहीं बोल सकते, तो भी हम काफी करीब है कि भाई ये इमोशंस जो है वो स्पेसिफिक बीमारी भी क्रिएट कर सकते। यहां पर एक बात, जैसे ना साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया है कि जिसमें 1981 की ये स्टडी है कि जिसमें क्या किया कि जो एक्चुअल कैंसर के ट्यूमर होते हैं ना, उससे निकाल करके फिर वो उन्होंने रैट्स के अंदर उसको इंजेक्ट किया देखने के लिए कि कितनों को कैंसर होता है। और उसके दो ग्रुप थे, है ना, एक तो ग्रुप ऐसा था कि जो एस्केप नहीं हो सकता है ना, वो कुछ भी करे उसको वो मिलने ही वाला है, तो उसमें ऑलमोस्ट 73% में कैंसर हुआ। और दूसरा ऐसा ग्रुप था कि जो अगर कोशिश करे ना तो एस्केप हो सकता है। ये डिफरेंट तरीके होते, जैसे एक आपको छोटा सा ठीक लग रहा है सबको कि ज्यादा साइंस ऊपर से जा रहा है ना, नहीं मतलब आपको भी आश्चर्य, डॉक्टर लोग रिसर्च कैसे करते होंगे, लेकिन चूहे पर रिसर्च करेंगे ना तो चूहे का एक केज बनाते, उसमें उसको बंद कर देते और फिर वहां एक जगह होती है, अगर चूहा वाट ऐसे मारेगा ना तो वो शॉक बंद हो जाएगा, है ना, और नहीं मारेगा तो शॉक लगता रहेगा। तो इसे दो ग्रुप बनाते, एक ग्रुप ऐसा होता है कि भी जिसमें वो कोई वो बटन है ही नहीं, चलो ऐसा ही बोल दे एक बटन है, वो बटन को ऑन ही नहीं कर सकता, कुछ भी हो उसको शॉक लगने वाला है। और दूसरा ऐसा ग्रुप होता है कि वो बटन को ऑन करेगा ना तो शॉक बंद हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ग्रुप हुआ कि जिसके कंट्रोल में है वो परिस्थिति, कंट्रोल में, एक के कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो ये देखा गया कि भले वो ट्यूमर के सेल सेम है, परंतु जिसके कंट्रोल में कुछ था ना, उनको कैंसर ऑलमोस्ट 37% हुआ, जिनके कंट्रोल में नहीं था 73% हुआ। देखो डबल से भी ऑलमोस्ट हो गया ज्यादा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसका गलत अर्थ नहीं उठा ना बहने, मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, परंतु उसका नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है कि जो थायराइड की बीमारी होती है ना, जो हाइपोथायराइड है, ये देखा गया कि भी किसमें ज्यादा होता है। ऐसा देखा जाए तो जो बहने काम नहीं करती है, घर में घर को संभालती है, बाहर से देखो तो उनको टेंशन कम है, जो बहनें जॉब कर रही है उसे डबल या ट्रिपल ड्यूटी कर रही है, घर को संभाल रही है, जॉब कर रही है, बच्चों को संभाल रही है ना, तो भी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो थायराइड की बीमारी है वो जो महिलाएं काम करती है उसमें कम है, हाउसवाइफ में बहुत ज्यादा है। क्यों? इसका ये मतलब निकला कि जो हाउसवाइफ है ना उनके कंट्रोल में नहीं है कुछ, बोले वो काम कम करती है, वर्कलोड उनका कम है परंतु वो इम्पावर्ड नहीं है। भाई 200 रुपया चाहे तो भी किससे मांगना पड़ता है, वो ना बोल सकता नहीं दूंगा। लेकिन वर्किंग वूमन भले मेहनत करती है परंतु वो इम्पावर्ड है कि उसके कंट्रोल में है कि भाई मैं जैसे चाहूं, मेरी इच्छा हो ऐसे मैं पैसे को यूज कर सकती हूं, अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूं। तो इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं, हार्डवर्क इज नॉट स्ट्रेस। एक्चुअली जब आप इमोशंस में अपने आप को ट्रैप फील करते या तो उसको नेगेटिवली हैंडल करते हो तब सारी बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। ये देखो, एक है ना, मैं आपको छोटा सा एक विष चक्र बताना चाहता हूं। मैंने कैंसर का है लेकिन हर चीजों के लिए ये इम्प्लीकेबल है कि आपको समझो डर लगा, स्ट्रेस हुआ, रिजेक्शन फील हुआ, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, फिर डिप्रेशन होगा, फिर कैंसर होगा और ये साइकिल चलता रहेगा उल्टा। जैसे पॉजिटिव साइकिल होता है, नए नेगेटिव साइकिल है। तो इसलिए करना क्या है, क्या करना चाहिए, बस पहले से ही सचमुच ये कुछ करो कि जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, है ना। इमोशंस को जैसे आज का विषय कहे कि ऐसे मैनेज करो कि यू फील लाइट एंड रिलैक्स। मेरे आसपास भी जो लोग हैं जो मुझे सारा दिन रात और दिन जो हमारा सेंटर है साइकेट्री सेंटर जब जहां हम लोग सब कुछ करते तो जो स्टाफ है मुझे कई बार बोलते ये प्रॉब्लम है आपको टेंशन नहीं हो रहा है, वो खुद देख रहे हैं कि समस्या है ना। मैं बताऊं तो होगा ना, क्या प्रॉब्लम है ना, कोई आसमान तो नहीं टूटा है, कुछ समस्या हुई हो, सीरियस भी हो सकता है। यानी कोई भी सपोज कि इट्स अ बिग सेंटर, वी हैव टेकन बैंक लोन्स ऑल्सो, तो कभी ईएमआई नहीं भरी गई, वो बैंक वाला आ गया तो उनको टाइम मिलते, रिलैक्स रहो, उसको समझा देते कि वे भी हम भर रहे। तो ऐसे इट्स नो होल योर स्टेट ऑफ माइंड। और एक चीज सब करेंगे, कौन कौन करेगा, जो सो गए ना उसको जगा दो, जिसने हाथ नहीं उठाया। एक सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करो। जैसे कहा ना कि मैं ऑलमोस्ट कहूंगा तो ऐसे बोल सकते कि 42 इयर्स से ना ये लाइफ के बारे में सोच रहा हूं और क्या उसका मीनिंग क्या हो सकता है, कैसे उसको ठीक करे। हाँ, भल तब तो कहेंगे कि फर्स्ट एमबीबीएस में ही थे। तो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसको आप सब भी यूज कर सकते, अगर मैं आपको यह प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज लाइफ, है ना, तो ढेर सारे उत्तर आ सकते, अभी टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे। परंतु सब में से एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, अभी मैंने आपसे इसलिए हाथ उठवाया क्योंकि आप सभी भी करो, और वह यह है कि लाइफ इज अ चॉइस। उनसे घर में जन्म हुआ वो आपकी चॉइस नहीं थी, है ना। मैंने चूज नहीं किया कि मेरा जन्म मिडिल क्लास में हुआ, परंतु उसके बाद मैं क्या क्या करता हूं वो सब मेरी चॉइस है। या तो ये भी कहे कि कौन सी समस्या आपके सामने आएगी वो आप शायद आपकी चॉइस न भी हो, वो आपके कंट्रोल में न भी हो, लेकिन जो भी हुआ उसमें आप क्या विचार करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या इमोशन क्रिएट करेंगे, वो आपकी चॉइस है। जैसे सवेरे उठते हैं ना कि मोबाइल को खोलना या थोड़ा मेडिटेशन करना, वो आपकी चॉइस है ना। जल्दी जल्दी स्नान करना या रिलैक्स होकर स्नान करना आपकी चॉइस है। ऐसा हर सिचुएशन में आप देखो कि भी हेल्दी खाना या अनहेल्दी खाना आपकी चॉइस है, कितने बजे सोना आपकी चॉइस है, भले नींद अच्छी आए ना आए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम सोने तो टाइम पर जा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना कि नहीं करना वो आपकी चॉइस है। चलो आपको बहुत नहीं आता है लेकिन आप दो मिनट भी बाहर तो निकल सकते हैं ना। अने पूरी किताब है यहां वन मिनट एक्सरसाइज, सबको लगेगा क्या अरे बहुत पावर एक मिनट की एक्सरसाइज, उसका एसेंस क्या है मालूम है? वो ऑथर ने कहा है कि बस एक मिनट स्टार्ट करो, समझो वॉक पे जाना है घर के बाहर निकल जाओ। वो अपना भी बोलते हैं मैंने एक मिनट ही सोचा था लेकिन एक घंटा करके आया। तो ऐसे स्टार्ट तो करो, वो देखो ढूंढो तो आपको मिल जाएगा। आपको अपना बीच में मुझे भी ना बहुत भूख आश्चर्य होता था, बहुत भूख लगती थी। जो डॉक्टर हूं बहुतों को दिखाया भी, किसको किसको दिखाया कि मैं भूख कम करो, हो ही नहीं रही है ना। फिर एक्सपेरिमेंट करने लगे तो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो थोड़े दिन में मिल गया सचमुच कि बस इतना सा खाओ फ्रूट सैलेड्स और एक चीज है, आप पूछेंगे तो आपको बताऊंगा कि बस उसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं है, समझे। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ओके देखो अभी इस पे आता हूं, इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इमोशंस को हील नहीं करेंगे ना तो स्किन डिजीज से लेकर के बोन डिजीज तक की बीमारियां हो सकती है, हेडेक से लेकर के हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है ना। ज्यादा नहीं बस क्योंकि टाइम कम था तो मैं जब चूज कर रहा था तो सोचा ये मोस्ट पावरफुल चीज बता, और बहुत कुछ है, हार्ट डिजीज भी हो सकता है गलत इमोशन से। तो अब है ना कि भी कैंसर को क्रिएट करने वाली क्या है? आप में से कईयों ने सुना होगा टाइप ए पर्सनालिटी, सुना है किसी ने टाइप ए पर्सनालिटी? नहीं सुना, ओके। तो टाइप ए लोग हैं ना बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, ए नहीं चलेगा उसको ऐसे ही चाहिए। एक पेशेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर मैं ऑफिस से घर आता हूं ना तो आराम से चाय नहीं पी सकता, मुझे आधा घंटा लगता है सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए, जब तक सब ऑर्गेनाइज ना हो जाए तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, है ना। उनको टाइम अर्जेंसी भी होती है, खुद भी करते दूसरों से भी कराते, है ना। एक फिल्म का डायलॉग बन सकता है, सचमुच है। मेरे एक रिश्तेदार है, उनके हस्बैंड अमेरिका गए और आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि सवेरे 7 बजे फोन करने का, ये तब वहां शायद शाम के 9 बजे होंगे। तो वाइफ फोन करती थी ना तो पहला ऐसे नहीं हेलो या ओम शांति नहीं, पहले क्या बोलते थे मालूम है? घड़ी में देखो कितने बजे, 7:01 हो गई है। क्या बोला था? 7 बजे, 7 मतलब 7, वो सेकंड भी आगे नहीं हो सकता। तो जो ऐसी पर्सनालिटी है ना दैट इज अ टाइप ए पर्सनालिटी, और वो बोले अच्छी है एक प्रकार से, परंतु उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उससे एग्जैक्टली अपोजिट मेरे जैसे टाइप बी, मुझे हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। आई एम रिलैक्स लेजी पर्सन, मैं बोलता हूं आई एम इम्परफेक्शनिस्ट, आराम से करो, टेक थिंग एज दे कम ना। वो बुरा है, इसे तो अच्छा नहीं भी है, परंतु उनको जैसे कहेंगे कि हार्ट डिजीज नहीं होगा। और एक पर्सनालिटी है जिसको बोला टाइप सी पर्सनालिटी, ये टाइप सी लोग है ना बहुत अच्छे होते हैं। टाइप सी लोग कभी गुस्सा नहीं करेंगे, टाइप सी व्यक्ति कभी डिमांड नहीं करेगा, आपको कभी भी ना नहीं बोलेगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। परंतु आप भी समझ गए होंगे ऐसा करने में उसे अपने इमोशंस को बहुत दबाना पड़ता है। तो जब वो इमोशंस को दबाता है ना तो कहीं तो बाहर निकलेगा, तो कैंसर के रूप में बाहर निकलेगा। भले गुस्सा नहीं करना है, नहीं बोलना कि भी डॉक्टर ने बोला था गुस्सा नहीं करेंगे तो कैंसर होगा, अभी मैं गुस्सा करता, गुस्सा नहीं करना है, आगे भी मैं बताऊंगा। परंतु ना बोलना सीखना है। सपोज कि भी आपका बॉस आके, या तो आपका कलीग समझो, आपका कलीग आके सवेरे आपको कहे कि भी मेरा ये काम कर दो, वो तब आप फ्री हो तो जरूर करो, ये बात नहीं कि नहीं करो, लेकिन आपके पास और काम है और आप ना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहते? मतलब लोग ना कहते उनको बुरा लग जाएगा, है ना, मेरा एक फ्रेंड छूट जाएगा, वो कभी मेरे से फिर अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा। तो मैं नहीं कहता हूं कि रफली ना बोला जा मैं बिजी हूं, है ना, उनको ये बोलो कि अभी मेरे हाथ में चार काम है, आपको ओके हो तो मैं शाम को 5 बजे आपका एक काम कर दूंगा, है ना, या तो कल सवेरे मैं आपको यह काम कर दूंगा। तो ऐसे जिसको बोला है असर्टिव बिहेवियर, है ना, वो रखेंगे ना तो इमोशंस को आपको सप्रेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसमें ना फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, डिस्पेयर, ट्रॉमा और लॉस, सप्रेशन ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ इमोशनल आउटलेट, फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, पीछे के देखेंगे सब एक में ही आते। बोले और भी कारण है, यही कारण नहीं, भारत में देखो तो टोबैको यूज इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ कैंसर, फिर और भी रीजन है, बट नेगेटिव इमोशन इज वन ऑफ देम। जिसे मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये हार्डवर्क नहीं, इट इज द हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड विच लीड्स टू स्ट्रेस, है ना। एंड व्हाट इज एटीट्यूड? हाँ, तीन लोग ऊपर आएंगे स्टेज पे, आओ फटाफट, आइए आइए तीन लोग आओ, नहीं आना, डर रहे, तीन लोग स्टेज पे आ जाओ, किसी ने नहीं बुलाया अभी तक आपको, इसलिए आ जाओ तीन लोग आ जाओ स्टेज पे, अभी ज्यादा नहीं आना, पहले तो एक भी नहीं आ रहा था। आइए आइए आइए, हाँ चप्पल निकालना, सूर्यदा दिन ऐसे 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 ऐसे, आप इधर आ जाओ, आप यहां आइए, यस यस, अरे ही इज एन ऑब्जेक्ट, समझो ना, कोई सिचुएशन कुछ भी कहो, व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो है ही, है ना, आपको क्या क्या दिख रहा है? हाँ, और
डिजाइन,
आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वो दिख रहा है, और देखो अब ये दोनों को भाई की अलग अलग चीजें दिख रही है, बरोबर, क्यों क्यों बोलो? क्योंकि एंगल डिफरेंट है, तो बस लाइफ इज लाइक दैट। है ना, परिस्थिति ना अच्छी है ना बुरी है, न स्ट्रेसफुल है न रिलैक्सिंग है, सिर्फ आपकी एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इज द एंगल फ्रॉम विच यू लुक एट एनी थिंग। तो अगर इमोशंस को हील करना है ना, सिंपल सा काम करना है, क्या करना है? एंगल को बदल दो। ओके, बैठिए, थैंक यू। हाँ, डिफरेंट डायमेंशन, हाँ हाँ, है ना, डिफरेंट डायमेंशन को देखो, डिफरेंट एंगल से देखो, और आपको सचमुच मिलेगी। हाँ, आपको अपना ही उदाहरण देना हो तो रोज कम से कम एक पेशेंट मुझे बोलता है कि डॉक्टर आप हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि उनको हमने ठीक किया। लेकिन ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे कि ये डॉक्टर तो बहुत आलसी है, है ना, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, हाँ, ये कुछ भी नहीं करता ऐसा बोलने सचमुच मिलेंगे, क्योंकि मैंने सुना इसलिए मुझे पता है, मेरे पीछे लोगों ने बोला है कि तुम बहुत आलसी हो लोगों ने बोला यू आर मोस्ट डिसऑर्गेनाइज पर्सन, है ना। तो इट इज एंगल, आप कौन सी चीज को देखते हो, समझ गए। अभी घर में भी हस्बैंड एंड वाइफ को देखने का जो एंगल है ना वो बदल दो। अभी तो मैं लाया नहीं हूं, नहीं तो एक पूरी स्लाइड है। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना कि एंगल को बदल दो तो बूढ़ी महिला जवान हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता कभी भी नहीं बोलो पत्नी बूढ़ी हो गई है, एंगल को बदलो वहां पर ना, फॉर एनी ऑफ योर सिचुएशन ना। बहुत प्रेशर है काम का ऐसा भी नहीं बोलो, उल्टा उसको आप ऐसा, मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि भी प्रेशर में हम सीखते हैं बहुत कुछ, अदरवाइज हम लाइफ में सीखते नहीं है। अब देखो अभी एकदम रूट पे आता हूं, ध्यान से सुनना है। मैंने कोशिश किया कि ये साइकोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ये सारा 40 सालों में, आप 40 साल नहीं बोलेंगे, मैं भी अराउंड 35 इयर्स, क्योंकि 35 इयर्स में कोशिश की है कि भी साइकोलॉजी को सिंप्लीफाई करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में देखो कुछ अच्छा ही आए कुछ बुरा ही आए, सब कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेस है। तो मैं समझता हूं ये सब इन एक झाड़ की तरह है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि भी एक झाड़ में एक से दो डालियां निकली, दो से और पांच निकली, दस निकली, दिस इज अ रियल। हा अभी ये लड़की जिसका मैं केस आपको बता रहा हूं, अमेरिका में उसका बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन जब मेरे पास आई थी आज से मे भी 20 साल पहले, तब तो वो इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में 5 बार फेल हुई थी, और मां बाप को ऐसा टेंशन था कि लड़की कभी इंजीनियरिंग कर भी पाएगी या नहीं। और इतना जल्दी नहीं होता है, थेरेपी इज अ प्रोसेस, शायद 6th-7th सेशन में हुआ होगा जब हम लोग उसके साथ उसके सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। अगर है ना उसकी आपको ये देखना हो ना कि भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, तो यहां देखो कि वो रेस्टलेस नहीं थी, गुस्सा वाली थी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, जल्दी से भूल जाती थी, एग्जाम में फेल हुई थी, है ना, नींद नहीं आ रही थी, अलग अलग थी। तो एक बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तब उसने खुद बोला कि डॉक्टर नो वन अंडरस्टैंड्स मी। तो ना हमको भी लगा कि मिल गया कहीं को, तो इसका जो रूट है, ये लड़की का जो सारा ये प्रॉब्लम है इसका रूट शायद यहीं पर है। क्या था रूट? कि मुझे कोई समझता नहीं, और मैं उसके परिवार को थोड़ा बहुत जानता था, तो मुझे ये भी पता था कि उसकी मां ने उसे एटीएम कार्ड दे करके रखा है, कभी भी चाहिए वो 20,000-25,000 की जो लिमिट है ना उतने पैसे एक दिन में निकाल सकती है। तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे क्लास में कितने जो आपके फ्रेंड्स है उसको मां ने एटीएम कार्ड दिया है? तो सोचने बोलते एक भी नहीं। तो मैं उसको कन्विंस किया कि देखो मां को तुम्हारे पे फेथ है, जो दूसरी माएं हैं उनके बच्चों पर फेथ नहीं है, तुम्हारी मां को फेथ है कि तुम जरूरी उतना ही पैसा निकालोगी, कभी ज्यादा निकालोगी इमरजेंसी में ही निकालोगी। ऐसी 7-8 बातें उसको अलग अलग बताई, और पूरा इसका टेक्निक, इतना जल्दी नहीं होता है, बिलीव मी वो उसी साल पास हो गई, है ना। मां बाप के लिए भी मिरेकल था, जैसे कहा ना आज तो अभी मैं जाके आया हूं, इट्स अ ह्यूज विला, उसके अंडर में 200 लोग काम करते, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, उसकी छोटी बहन को प्रॉब्लम है जो पहले नहीं था, बट शी स्टेबल ना, क्योंकि उसका जो जड़ था ना नो वन अंडरस्टैंड्स मी वो निकाल दिया। سے دوسرا ایک کیس ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کیس ہے کہ جو جب ہمارے پاس بھی آیا بھی تھا تو چہرے پہ بولے ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بینک میں کام کرتا تھا اچھی پوسٹ پہ، لیکن بھائی جیسے کہ خوشی نہیں، بولے اچھی وائف ہے، ایک بچی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، پرنتو خوشی نہیں، ہی واز ویری ہمبل، وہ کبھی بھی فون نہیں کرے گا، پہلے تو میسج ڈالے گا کہ کین آئی کال یو، پھر یس بولیں گے تبھی وہ فون کرے گا، اور جب اس کا بھی اسٹڈی کیا اچھے سے تو اس کے فادر کی جلدی ڈیتھ ہو گئی، پرنتو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے انکل سادین سب بہت ہی سپورٹیو تھے، بولتے مجھے معلوم بھی نہیں کہ کبھی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، تو ایکچوئل فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں ہوا، پرنتو جب یہ پوچھا نا کہ بھی فادر کی ڈیتھ ہوئی پھر آپ کے ایموشنز کیا چلے، تو اس نے بولا دو چار دن اتنا میرا چلا کہ ابھی میں اکیلا ہو گیا، نو آئی ایم الون، جو آج بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، سب کچھ اچھا ہے صرف، تو ایسے ایک ایموشن، اب اس پہ بھی نا پورا دو گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک ایموشن آپ کو پوزیٹو بھی بنا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی بنا سکتے ہیں، یہ آگے نہیں جائے، اوکے دے وی ڈو سم تھنگ، تو جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک بات میں ہے نا کہ ایموشن، اور اب اگر اور ایموشنل ہیلنگ کی بات کرے تو اس کو دس از اگین جیسے میں نے بنا لائف از اے چوائس، وچ از مائی فیوریٹ اسٹیٹمنٹ، کہ ہمیشہ سوچو کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے، میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا، وکٹر فرینکلن جو سائیکیٹرسٹ تھے اور نازی کی آرمی نے ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا تھا، اور بہت پوری کتاب ہے مین ان سرچ آف میننگ، اس میں وہ بولتے ہیں کہ بھائی کیسے لائف از اے چوائس، اس کا نا ایکسٹریم ادھارن میں آپ کو بولتا ہوں، آپ کے اور میرے ساتھ جو سمسیا ہے نا اتنی بڑی بالکل نہیں، میں آپ کو دو تین ادھارن دوں گا ابھی، مطلب ہاریفائنگ پرابلم، لیکن اس کے بیچ میں بھی وہ لوگ اسٹیبل رہے تو آج یہ سب لوگ ورلڈ فیمس ہے، وکٹر فرینکلن لکھتے ہیں کہ وہ جو سولجرس تھے نا ان کو تو ہمارے سے آنند لینا تھا، ہم لوگ بھوکے مر رہے، کھانا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو تو مزہ کرنا ہوتا تھا، تو ایک بار ہے نا سبھی قیدیوں کے سب کپڑے اتار دیے اور آئینے کے سامنے لے گئے، تو لوگ ایسا ایسا کچھ کچھ کرنے لگے، نروس ہونے لگے، رونے لگے، کچھ کچھ، جب وکٹر فرینکلن کا ٹرن آنے والا تھا انہوں نے کہا، وہ خود لکھتے کہ میں نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، لیکن میرے کنٹرول میں کیا ہے یا چوائس کیا ہے، اس نے کہا دو چوائس ہے، ایک تو میں شرماؤں، برا فیل کروں یا ہنسوں، تو کہتے جب مجھے آئینے کے سامنے لے گا تو میں ہا 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 زور سے ہنسنے لگا، تو کہتے وہ سولجرس بھی بےچارے شرما گئے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کہ اس کو ہم برا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پر تو ہنس رہا ہے، تو لکھتے کہ بس تب میرے پاس چوائس تھی کہ میں ہنسو، کوئی نے روکا تھوڑی تھا، تو سچ مچ ایسا ہی ہے لائف میں، بل ایک پرابلم ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں، اسم تو کبھی بہت گرمی ہے تو گرمی لگ رہی ہے، تو تب بھی آپ سوچو کہ میں ریلیکس ہوں، مجھے عادت پڑ رہی ہے نا، دھیرے دھیرے یہ بھی عادت پڑ جائے گی، ایسا دیر آر سو مینی پاسبل تھاٹ ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن، ابھی دیکھو ایک دو میں آپ کو جلدی جلدی، ٹائم تو کم ہے، دو تین میں نے بولا نا، اینیس ڈائری کس نے پڑھی ہے؟ نہیں، کتنا بھی بڑی سکے، یہ بہت فیمس ہے، اس کی آلموسٹ کہیں گے کہ بھی 20-30 کروڑ کاپیاں بک چکی ہے، ایک 13 سال کی لڑکی کی ڈائری ہے، یہ بھی کانسنٹریشن کیمپ میں لکھی گئی تھی، کہ جب ہے نا ان کا پریوار 2 سال تک वो हिटलर की आर्मी से बच करके छुपके से वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहे थे कि जहां एक टॉयलेट 25 लोग यूज करते थे, खाने को मिलेगा या नहीं मालूम नहीं था, चल भी नहीं सकते क्योंकि आवाज आया और नीचे से अगर मालूम पड़ गया तो खत्म। तो वो दो साल में उसने वो डायरी लिखी और फिर तो लोग पकड़े गए। दूसरे एक साल में तो उसकी मृत्यु भी हो गई, परंतु वो डायरी किसके हाथ लगी और उसने जाके उसके फादर जो जीवित थे उसको दी, उसके फादर ने कोई पब्लिशर को दे दी और पब्लिशर को लिखा कि 13 साल की लड़की ने बहुत अच्छा लिखा है, उसमें थोड़ा सा अच्छा चेंजेस करके उसको पब्लिश किया, करोड़ों कॉपियां बिक चुकी। तो मैं कहता हूं कि इतनी भयानक परिस्थिति में वह लड़की ने उसकी जो कंट्रोल में था ना कुछ अच्छा किया। दूसरी भी अगर आपने एक किताब पढ़ी हो, लास्ट गर्ल, इस तक इन अ वेरी फेमस नॉवेल, जो भी सचमुच है ना हॉरिफाइंग स्टोरी है, वो इंटरव्यू में तो देख भी नहीं पाए, सिर्फ मुझे तो इंटरेस्ट था साइकोलॉजिकली, देयर वाज़ इंटरेस्ट। कहते इराक में ऐसा होता है कि दो ग्रुप में लड़ाई हुई तो सब मेल को मार डालेंगे और फीमेल को जाके बेच देंगे एज अ सेक्स स्लेव, और फिर क्या क्या उसके साथ बीता है, बट अल्टीमेटली शी कुड एस्केप, है ना, वो एस्केप हुई और फिर उसने अपनी स्टोरी लिखी। अब तो यूनाइटेड नेशन में भी उसने अपना लेक्चर दिया। तो लाइक दैट देर आर सो मेनी, और भी कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे अपना निर्भया का केस था ना, पाकिस्तान में भी एक निर्भया है, हमारी निर्भया को तो है ना इंसाफ मिला, उसको इंसाफ नहीं मिला और वो अभी भी जिंदा है, परंतु उसने उसकी जो कंट्रोल में था वो किया, तो आज वो भी वर्ल्ड फेमस है, उसको कई अवार्ड्स मिले हैं। दो मिनट,
Thank you.
से मैं आपको और भी 5-10 उदाहरण दे सकता हूं। उनके सामने जो समस्याएं आई, देखो ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सुनता हूं क्योंकि मुझे एक तो इंटरेस्ट है सुनने का, और जब सुनता हूं तो लगता है कि भाई क्या हम इसको फेस कर पाएंगे। ये ना शायद उड़ीसा के या कहां की कहां, इट्स द हॉरिबल थिंग, एक छोटी सी बात में नहीं ना, वो वाइफ पर गैंग रेप हुआ, बेचारा हस्बैंड बच गया क्योंकि वो झाड़ी में छिप गया छोटे बच्चे को लेके, और फिर वो बंदे ने जो लड़ाई लड़ी है यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था उधर, तो वो है ना क्या बोलेंगे, जेल में वो बोलता था कि हां मैं बोलूंगा, लेकिन जज के सामने बोलता था नहीं ये झूठ है, फिर से पिटाई होती थी उसकी, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मीडिया में आ गया तो उसको थोड़ा भले पूरा नहीं मिला इंसाफ, लेकिन थोड़ा तो इंसाफ मिला। तो क्या कहेंगे, ये सबका मैसेज क्या देना चाहता हूं, अभी प्रॉब्लम बताता हूं आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि हम तो डेली पेशेंट्स के साथ संवाद करते हैं, भी आप इतने सारे हम 1-to-1 करते ये सब बोल रहा है तो पेशेंट बोलता है उसका प्रॉब्लम अलग है मेरा अलग है। ये भैया तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा प्रॉब्लम तो छोटा सा है कुछ तो है ना, उनके प्रॉब्लम तो हर साल, सिर्फ क्या है कि हमको लगता है कि वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। आप सोचिए कि उन्होंने जो यातना सहन की, ऐसे बस यातना नहीं सहन करनी भी नहीं, हमारे सामने एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है रियलिटी में, हमको सिर्फ जो हमारे कंट्रोल में है वह करना है, माइंड को पीसफुल रखना है, स्टेबल रखना है, कैसे मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो स्ट्रेस है ये कॉमन स्टेप, दो अप्रोच हो सकते, एक तो उससे डरो या दूसरा उससे चैलेंज के रूप में लो, और जब आप चैलेंज के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम आते हैं, डरते तो सारे नेगेटिव परिणाम। ये भी याद रखिए कि जो भाषा हम यूज करते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी नहीं बोलो टेंशन स्ट्रेस तनाव, क्या बोलो मालूम है, चैलेंज। अब देखना कई लोग बोलते हैं आज मेरे सामने चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे आप बोलते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन ताकत आती है, तो और चैलेंज के रूप में कैसे लेना है, हाँ सब करेंगे मैं बोलूंगा ऐसा, हाँ सच कुछ करना मैं करता हूं, भले वॉशरूम में जाके करो लेकिन करना, हाथ को ऐसे रखो, हाँ सभी करो, वो तीन शब्दों को यूज करना है फिर आप सबको करना है, ये तीन शब्द है फेस इट, अरे धीरे से जोर से बोलो, देखो मैं ना आपके लिए आया हूं बॉम्बे से, आपको आश्चर्य होगा कोई काम नहीं था यहां पे, और अगर दिव्याबेन नहीं होते तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भी ना बोल देता कि मैं नहीं आने वाला, फिर सभी आदमी वापस जा रहा है ना, बोरीवली हमारा सेंटर है तुम भी उनको नाम नहीं बोल सकते, हाँ तो जोर से बोलो, हाँ फेस इट, अभी भी नहीं बोलते इतना कॉम मनमोहनी वन में आवाज नहीं जाना चाहिए, फेस इट फुलफिल इट एंड बिकम फ्री, समझे, बस एक बोलने का, फेस इट फुलफिल इट एंड बिकम फ्री, यस यस यस, रिफेक्ट है। जब आप फेस कोई भी समस्या, एक चैलेंज, सपोज फॉर एग्जांपल आप सब ट्रांसपोर्ट से है, एक रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो इट्स अ चैलेंज है ना, वो एक स्पेशल को डिमांड लेके आया है, आप उसको फेस करो, भागा दौड़ी करो, देखो तभी शक्ति आ जाती है। आपने भी जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया आपको पता होगा कि जब ऐसे हादसे हुए शायद आप 48 आवर्स भी आपने काम किया होगा, कहां से शक्ति है, आप में ही थी। तो फेस, फिर फुलफिल मतलब कि ना हर एक परिस्थिति की कुछ डिमांड होती है ना, वो डिमांड को फुलफिल करो, और आप फुलफिल करेंगे ना तो यू विल बिकम फ्री, है ना, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और उस समय इंजॉय करके करो। तो करना तो है ही, तो लेट अस इंजॉय, समझे? ओके, अभी देखो आप खुद अभी ढूंढना, ये थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करना है आपको। हम एक दिन बिताते ना यहां पर, नहीं जब वापस जाएंगे अपने स्थान पर, कि सारे दिन में हमारे कितने विचार है ना जो कंप्लेन के है, बहुत ज्यादा कंप्लेन के है, सेल्फ कंट्रोल के थोड़े ही है ना। अभी करना क्या है, इसको रिवर्स करो कि मेरे कंट्रोल में क्या है, बस यही प्रश्न पूछो। प्रॉब्लम है कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, लिखो चाहिए तो, क्योंकि टेंशन आता है ना तो विचार तो नेगेटिव चलने वाले है ना, लिखो उसको, और फिर लिख करके सचमुच करने लगो, आप देखना आपको खुद होगा कि अच्छा हुआ वो प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम नहीं आता तो शायद हम कुछ भी नहीं करते, दे आर एक्सपर्ट है ना, मेरे से रूठ जाता है कंप्यूटर। ओके ओके ओके, चलो स्लोली है, शायद मैं जोर से मारता हूँ स्लोली। तो क्या होगा कि कंप्लेन की फील्ड छोटी सी हो जाए, सेल्फ कंट्रोल बड़ा हो जाए। देखो आपको ना मजा आएगा, उसने क्यों किया ऐसा नहीं। और कई बार अभी देखो इमोशन में दूसरी एक दिक्कत, एक तो है ना सोचना है, देखो ना कि फेस इट फुलफिल इट, तो डिफरेंट डिफरेंट भी बॉस है तो बॉस की कुछ डिमांड है कि भी आप ए हार्डवर्क करके इसको ठीक ठाक कर दो, ऐसा कुछ नहीं। सपोज घर में है हस्बैंड एंड वाइफ है, कुछ हस्बैंड की डिमांड हो सकती है कि जब मैं घर आऊं तो सब ठीक ठाक होना चाहिए, यू नो सारा दिन रहते ऐसा पॉसिबल है, और कुछ स्पेसिफिक आपसे चाहते तो उस पर ध्यान दो। सच मानना, मैं कोई मतलब नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, कि आप भले 55 साल के भी हो गए, हस्बैंड चाहते कि आप प्रॉपर ठीक ठाक ड्रेस पहनो, ऐसा नहीं कि कैसा भी चलेगा, उनको क्या बोलता है, अरे 40 साल हो गए शादी के अभी भी बोलता है मैं अच्छा ड्रेस पहनो, वे चाहता है ना कि अच्छा, क्या तकलीफ है आपको, है ना, भी पैसे तो देने वाला है कि नहीं। अगर हस्बैंड चाहता है कि तुम ब्यूटी पार्लर में जाओ तो जाने का, ऐसा नहीं कि क्या फायदा है नहीं, इट डिपेंड्स ना, इट मे बी अपोजिट। अभी एक सिचुएशन में वो बहन इतना रोने लगी कि डॉक्टर साहब मैं मेरे हस्बैंड का कितना ख्याल करती, कितना अच्छा अच्छा खाना बना के देता, फिर भी गुस्सा ही करता। मैंने उनसे बात की, हस्बैंड बोला देखो डॉक्टर मेरा वेट बढ़ गया है, मैं 1.5 घंटा जिम में जाके एक्सरसाइज करता हूं और फिर आके वो पकौड़े बना के देती है। मैं इसको 10 बार बोल चुका हूं कि सिंपल खाना दो, इन्हें मानती नहीं है, वो तो अच्छा अच्छा बनाना उसका प्यार है। तो नहीं, इट इज वेरी इजी ना, सलाद काट के दे दो उसको, खाओ। आपके लिए भी इजी है, इट मे बी अपोजिट ना, कई बार आप सलाद काट के दे देते उसको अच्छा अच्छा चाहिए। यहां अब ऑब्जर्व करना है कि भी बॉस को क्या चाहिए, या हस्बैंड एंड वाइफ है, आपका टीम लीडर है, उसको एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, उस पर थोड़ा ध्यान दो ना तो बहुत कुछ स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मेरी उंगली को समझता नहीं था। हाँ ओके ओके, हो गया हो गया। जैसे अभी एटीट्यूड का बताएं, एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ काम करना है तो बस इस पर करो कि मैं मेरी एटीट्यूड को चेंज कैसे करूं, है ना। अभी टाइम तो कम है, नहीं तो मैं आपको उदाहरण भी देता कुछ कुछ, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जब व्यक्ति ने कुछ राइट एटीट्यूड की तो सचमुच अच्छा, और आपको ना सिर्फ ढूंढना है उसमें, आप अगर कोशिश करेंगे ना तो मिल जाएगा। देखो दो काम करने, एक तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करो ना, हमारी फिंगरप्रिंट यूनिक है ना, हमारी आई लिड्स भी यूनिक है। देखो फॉरेन आप जाते हैं ना तो एयरपोर्ट पे आपकी आंख से उनको पता चलता है यही बंदा है। और दूसरा, बस दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस भी देना है, परंतु तो ऐसा नहीं कि भी सभी से अप्रूवल सीकिंग एक बिहेवियर होती है कि सब लोग मुझे अच्छा बोले ना तो ही मैं अच्छा हूं, ऐसा नहीं। डोंट बी अप्रूवल, भले कोशिश तो करनी है। दिस इज नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सप्रेशन, एक मोड में एग्रेशन है, दूसरे में सप्रेशन है, बोथ आर हार्मफुल, बोथ आर नेगेटिव इमोशंस, बेस्ट इज अ एसर्टिव बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि भी जो मन में ना वो बोलो, भले प्यार से बोलो, समझा करके बोलो। एक तो अच्छा ये होता है कि भाई तुम्हारी ये बात राइट है, समझो कि आपका कोई सबऑर्डिनेट है कि जो काम नहीं करता और आप उसको भी निकाल भी नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो अब उससे आपको काम करवाना है ना। तो कहीं को लगता है गुस्सा करे, गुस्से से नहीं हो, सबसे पहले है ना जब भी उसको बुलाओ ना, एक तो उसकी प्रशंसा करो, और सर मतलब रियलिस्टिक है, तुम ए ए ए अच्छे हो। पर ये एक बात है ना, छोटी सी बुरी है ना, हमारे पास ही एक बहन है कि शी इज रियली वेरी गुड, इम्पॉसिबल काम वो कर सकती है। जो बाहर का काम होता है ना लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि भाई क्लिनिक में ही काम दो, हम बोले ना बाहर जाके करो तो नहीं, बट वो बाहर जाके भी सब कुछ करेगी। सिर्फ उसका एक प्रॉब्लम था कि वो लेट आएगी और सारे कंप्लेन करेंगे, फिर इनको लेट आने देते, हमको भी आने दो, है ना। फिर एक बार मैंने उनको सारा बोला, पहले तो देखो तुम्हारा ये अच्छा, यू आर एन एसेट टू अवर सेंटर, क्योंकि तुम कोई भी काम, वो कोई भी काम कर सकती है, ऑलराउंडर, लेकिन सिर्फ एक आप थोड़ा ट्राई करो कि तुम लेट आए, तो बिलीव मी जब ऐसे अच्छे से बोला ना तो रोने लगी, और उसने अपना रियल प्रॉब्लम बताया कि जो हमको मालूम ही नहीं था। एक साल से क्लिनिक में काम कर रही है लेकिन उसके घर का प्रॉब्लम हमको मालूम, कुछ कुछ मालूम था, लाइक नो शी सिंगल, ऐसा कुछ बात चीजें हमको मालूम, बाकी हमको उसके घर का प्रॉब्लम मालूम। तो रियली मुझे लगा कि इट्स रियल। फिर हमने उसको कुछ ऑप्शंस भी बताए दो चार बार, एक बार में नहीं होता है। अल्टीमेटली शी फाउंड सोल्यूशन, उसने ही बोला भी मैं टाइम से आऊंगी, मेरे को सोल्यूशन मिल गया, उसने थोड़ा एसर्ट भी किया, है ना। पुरानी बता रहा हूं आपको, तो ऐसे पहले अच्छा बोलना है, फिर जो उसका प्रॉब्लम भी बताओ तो व्यक्ति समझ करके चेंज करेगा, उसको रास्ता भी बताओ ना, तब वह होगा। मेरे से रुक जाता है। ओके कर देंगे, कर देंगे लेटेस्ट काम। तो ये जो हम इमोशंस की बात, अभी एंगर इज अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, पूरा मैं नहीं ले रहा हूं, मैं आपको कुछ है ना एक बोलेंगे कि ओवरऑल जनरल चीजें बता रहा हूं कि भाई इमोशंस को हमें हैंडल कैसे करना है। अच्छा नाउ, कुछ कुछ चीजें मैंने आपको अभी तक भी बताई, अब मैं प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। एक सिंपल काम ये करना है, ये ना अपने जो मन में विचार चल रहा है ना उसको डिटैच होकर के ऑब्जर्व करने की आदत डालो। कभी आपने पंछियों को देखा है आसमान में? कहीं आपने घूमने गए, कुछ आसमान में पंछी उड़ रहे हम देखते हैं ना? तो देखो, आप है ना उसको जज नहीं करते क्यों फास्ट दौड़ रहा है, वो पीछे हो गया, ये अच्छा है ये बुरा है, आप तो खाली पंछियों को इंजॉय करते हैं ना? ये क्यों रह गया, हम कंक्लूजन पर भी नहीं आते हैं। तो बस ऐसा ही अभी अपने विचारों को भी पंछी समझो, जो अलग अलग विचार अपने आ रहे हैं ना, अंदर में सारे पंछी है, उन पंछियों को एक दिन में ना थोड़ी थोड़ी भी कि भी सवेरे सपोज उठे चाय आदि पी के थोड़ी आदत डालो कि पंछियों को ऑब्जर्व करना है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, स्नान करने के बाद थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने लंच ब्रेक लिया फिर बस थोड़ा एकदम बस रिलैक्स होकर अंदर में क्या चल रहा है वो मुझे वॉच करना है। आप देखना आपको मजा आएगा, एक तो है ना विचार कम हो जाएंगे और दूसरा आपको पता भी चलेगा कि अंदर में चल क्या रहा है। हाँ, अब देखो एक बार ये चार्ट अभी अभी प्रैक्टिकल है, ये सब करना है नहीं तो नहीं होने वाला है, थियरी नहीं है। आपको चाहे तो हम ये स्लाइड भी दे देंगे कि एक चार्ट लिखो, आपके पास कुछ है तो आप अभी भी बना दो चार्ट कि सारे दिन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है। सपोज आप सवेरे स्नान करके आए और आपको सॉक्स मिल नहीं रहे, है ना, समथिंग प्रैक्टिकल, तो हंगामा नहीं मचाने का कि जितना मैं मेहनत करता हूं इतना कमाता मेरा सॉक्स भी नहीं रख सकते, कि दिस वॉज अ प्रॉब्लम, व्हाट वॉज माई फीलिंग, फीलिंग शायद आपकी ये हो सकती है कि सब केयरलेस है, इनको अक्ल ही नहीं है, मैं 15 घंटा काम करके कमा के लाता हूं इतना बड़ा घर दिया, मेरा एक सॉक्स भी ये लोग जगह पर नहीं रख सकते। देन व्हाट वाज द रॉन्ग थॉट, क्योंकि रॉन्ग थॉट ये था कि आपने इसको मैग्निफाई किया या और कुछ किया उसे, है ना, इसमें राइट थॉट फिर सोचो क्या होता है। राइट थॉट ये हो सकता था, ये फैक्ट है, अमिताभ बच्चन भूल जाता है, उसने क्या किया है मालूम है, शायद हम लोग सब ये नहीं कर सकते, ये तो बड़े आदमी थे तो उन्होंने किया, वो ना चश्मे भूल जाता है, वो बोलते है मेरे हर घर में मेरे हर रूम में चश्मे है मैं भूल गया तो वो पहनता हूं, ये ना उसने इंटरव्यू में बोला, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, याद ये वहां भी चार पांच जगह पर है, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना। या ये दूसरा भी सिंपल सॉल्यूशन शांति से करो कि भी जो भी चीजों की जरूरत है वह रात को ही सोने से पहले वो अरेंज कर दो ताकि सवेरे भागा दौड़ी नहीं हो सॉक्स को ढूंढने। दूसरा भी बहनों के सामने जो प्रॉब्लम आता है वो सवेरे सवेरे वाले काम वाली बोलती है आज मैं आने वाली नहीं टेंशन फिर आपको सब मालूम है क्या क्या फीलिंग आती है। अभी रॉन्ग थॉट क्या हुए कि अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, बेकार है, है ना, जो भी रॉन्ग थॉट। अभी राइट थॉट क्या होगा इसमें, राइट थॉट ये हो सकता है कि देखो काम वाली तो अच्छे से बर्तन साफ नहीं करती है, 10 दिन में मैं एक बार अच्छे से साफ करूंगी तो बर्तन अच्छे हो जाएंगे, है ना, झाड़ू पोछा भी अच्छे से नहीं निकालती, एक दिन में बहुत अच्छे से निकालूंगी तो क्लीन हो जाएगा। सुनो, दिस कैन बी समथिंग पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे हो सकते उदाहरण। भी ट्रैफिक जाम में अटक गए, ये सचमुच हमारे साथ बहुत बार हुआ है, और लोगों को आश्चर्य होता है। एक बहुत बड़े ऑप्थल्मोलॉजिस्ट थे, अभी तो हम लोग यहां से एक बार जा रहे थे, मतलब क्या माउंट आबू से अहमदाबाद, और देरी हो गई, इतना मैं आराम से रिलैक्स कर रहा था, तो तब तो शायद कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर एक प्रोग्राम में बोले, एक मेरे ही प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने सबके बीच में बोला कि ये डॉक्टर बोलते हैं और सच बोल रहा है, मैंने इनको देखा है, मैं एक बार इनको आबू रोड से अहमदाबाद लेके गया था, हम लोग लेट हो रहे थे, हम सब पैनिक में थे, ये बंदा आराम कर रहा है। तो भी ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूं कि भी ये फैक्ट है कि अभी हम एक ट्रैफिक जाम में अटके हैं, भले ट्राई करो, जैसे भी जब भी प्लेन पकड़ना होता है आई गो ऑलमोस्ट 1.5 आवर बिफोर, कि ट्रैफिक जाम हुआ तो भी इश्यू नहीं है, वहां जाके एक्सरसाइज करेंगे, या ट्रैफिक जाम हो ही गया तो चलो अभी फॉरवर्ड प्लानिंग करो, है ना, मेडिटेशन करो, बहुत कुछ पॉसिबल होता है। तो ऐसे इसको सचमुच दिस इज अ ह्यूज थिंग, आप दो घंटा कर सकते हो और लिखना, बस आप लिख ये शुरू भी कर दो ना, आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगी। ठीक है, करेंगे, बोलते नहीं है मतलब करने वाले नहीं, तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आपको जो बोलना है बोल दो। हम तो कुछ सुनने के लिए आए। अच्छा चलो आप कहे तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये इधर ओके। हाँ थोड़ा सा मैं फास्ट जाता हूं। कहते कि भी यू मे लूज एवरीथिंग, सब कुछ पहले खत्म हो जाए, पैसा गया, इज्जत गई, सब कुछ गया, बट डोंट लूज योर होप। आगे बताएं, बस उसको आप रखो और उस स्थिति में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, तो उल्टिया फेमस हो जाए। अभी देखो मैं थोड़ा साइंस बताता हूं, नाउ वी आर गोइंग टू मोर डी। अभी तक अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा चलो ताली बजा के बता दो। नहीं अभी है ना, बहुत डीप साइंस है, शायद कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट्स अ साइंस, यू आर यूजिंग डे एंड नाइट। अगर हम साइंस को देखें तो भी पहले ना न्यूटन के लॉस थे, फिर मैग्नेटिज्म आया, एंड देन केम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का क्रक्स क्या है मालूम है, कि जिसको एक्सेप्ट करने में आइंस्टाइन को भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आज वह सत्य है कि कोई भी एक एटम है वह पार्टिकल भी है और वेव भी है। वह इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, इसको बोला है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिनका थोड़ा भी साइंस का बैकग्राउंड है आपने देखा होगा। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि भी एक है ना एटम की गन होती है, कि उससे दो स्लिट, एक है वहां पर दो जैसे स्लिट बनाई और एटम्स को बम्बार्ड करते, जब उसको सामने स्क्रीन पे लाया जाता है ना, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो अगर वो एटम वो पार्टिकल है तो पार्टिकल वहां पर लगेंगे, दूसरा अगर ये वेव है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न आएगी। तो साइंटिस्टों ने देखा कि हर बार इंटरफेरेंस पैटर्न आती है, इसका मतलब कि वेव है। परंतु जब उसके देखने के लिए आर्टिफिशियल कैमरा लगा दिया तो वह पार्टिकल हो जाता है, या तो वह एक एटम वो पार्टिकल हो जाता है, वो पैटर्न जो है ना वो बदल जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न हट जाती है। हर बार ऐसा हुआ, इवन वो जो वहां पर डबल स्लिट लगे थे इससे पहले भी उन्होंने कैमरा रखा, तब भी ऐसा ही हुआ, यहां पर भी रखा, उनको लगा कि भी पीछे क्या होता है, तब भी वही बात है। तो आज ये प्रूवन फैक्ट है कि एटम इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो हमारे बॉडी में जो भी को चलो 50 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक सेल में दो दो ट्रिलियन पार्टिकल्स है, तो वो सारे क्या है, वेव है। भले हम ऐसे दिखते हैं पर हम ऐसे है नहीं। और दूसरा एक है कि जिसको बोला है, अभी डिफरेंट चीज है, व्यक्ति चल जाए कि जिसको कहा कि क्वांटम जंप, क्वांटम जंप क्या है कि जो आपने बचपन से हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है घूम रहे, और कि इलेक्ट्रॉन है ना विदाउट एनी टाइम दे शिफ्ट द साइकिल, उसका जो चैनल है ना उसको चेंज कर दे, उसमें माइक्रो सेकंड भी नहीं लगती है। मतलब इसलिए उन्होंने एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है सुपर इम्पोजिशन, मतलब कि एक पार्टिकल है वो डिफरेंट स्टेट में ऑलरेडी है, आप जब उसको देखते हैं ना तब मालूम पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर भाई दो मैंने बॉल रखे, एक येलो एक रेड है ना, कि अगर मैंने रेड बॉल निकाला तो उसमें कौन सा होगा, लेकिन कहते हैं कि फिजिक्स में नहीं है, वो कौन से है, या चलो दूसरा उदाहरण लेता, जैसे दो ग्लास है, इसमें येलो और रेड है, इसमें ब्लैक एंड ब्लू है, तो किसमें दोनों है ये सब? वेन यू सी यू विल रियलाइज वॉट इज देयर. इसमें भी आइंस्टाइन को प्रॉब्लम था, समझ नहीं रहा था, परंतु आज आप सवेरे से जो अपना मोबाइल फोन यूज करते हो ना, यू आर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स. आप जाके एमआरआई कराते हो, यू आर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स. तो ये डे टू डे का अपना सब कुछ, आप टीवी में लगता है ना कैसे चैनल एक सेकंड में आ रहा है, वी आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स विच इज अ रियलिटी. तो अभी इसका इमोशनल हीलिंग में क्या रोल है? इमोशनल हीलिंग इसका एक तो सिंपल तो ये रोल है, मैंने थोड़ा बोला भी आपको कि एनीबडी, जैसे फॉर एग्जांपल सर है, मैं खड़े हो जाओ सर, खड़े, हाँ खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं, बट ही हैज एवरीथिंग, ही इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इज गुड एज वेल एज बैड, सब कुछ है. हाउ यू लुक एट हिम इज इंपॉर्टेंट, एंड वेन यू लुक एट हिम, समझ रहे? प्लीज से थैंक यू. तो सबका, इनका ही नहीं, हम सब, आपका वो प्यून है या आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है. सो अभी इसमें इमोशनल हीलिंग की बात कहां है कि स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और इट इज नॉट ओनली नो फिजिक्स, ये डे टू डे भी है. टाइम है ना आपके पास? देरी हो रही है? अब ये समथिंग न्यू, मैंने सोचा नहीं था, बोल रहा हूं ये आपको बिकॉज नो इट इज रिलेवेंट हियर, नहीं तो आपको जैसे मैंने सर को खड़ा किया आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या बोलना चाहते. ये सचमुच किया गया. एक बार है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए, बहुत बड़ी स्कूल में, और रिसर्चर को एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया पता है? कि उनके ग्रेड्स एंड वो टीचर भी बदल गए, वो ग्रेड्स उनको एक्सचेंज कर दिए. जो सी ग्रेडर था ना, बोला कि ये तो ए प्लस है, और जिनका ए प्लस आया था बोला कि ये तो सी है. ऐसे करके उनके जो रिपोर्ट कार्ड थे ना, वो उल्टे बोले उनके नए टीचर को. आप सच नहीं मानेंगे, एक साल में पूरा रिजल्ट बदल गया. जो सी ग्रेड वाले थे ना, ए ग्रेडर बन गए, ए वाले सी हो गए. कैसे हुआ? वो बच्चे तो वैसे ही थे, ये सिर्फ टीचर का नजरिया बदला. वो जो सी वाला था ना, टीचर देखने लगा कि हाँ ये ब्राइट है, ये प्लस है, ये ए प्लस है, तो वैसे उसको ट्रीट करने लगा. और क्योंकि उसको वैसे ट्रीट करने लगा तो अच्छा हो गया. और जो ए प्लस वाला था टीचर, ऐसे ये तो बेकार है, फेल होने वाला है, कोई काम का नहीं. तो कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट हुई और उसके ग्रेड भी कम होने लगे, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं. तो इसलिए अभी जो इमोशनल हीलिंग में पूरी बात है, ये समझ लो कि वी आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. और मेडिटेशन में यही होता है, मैं आपको थोड़ा कराऊंगा अभी नेक्स्ट. और एक चीज करनी है, इसको बोलेंगे अवेयरनेस. सब लोग खड़े हो जाओ, बहुत समय से बैठे हैं. आई एम एक्सरसाइज नहीं कराने वाला, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. खड़े हैं ना, अब ये ध्यान दो कि राइट या लेफ्ट, कौन से पैर पे ज्यादा वेट है? राइट किसका है ज्यादा? राइट पैर पे ज्यादा वेट है. थोड़ा भी 19-20 का तो फर्क है, इट्स इम्पॉसिबल कि देयर इज इक्वल वेट. और आपको समझ में नहीं आता है तो शायद न्यूरोपैथी हो गई. थोड़ा तो फर्क है ही है, फाइंड आउट करो. देखो मेरा राइट ज्यादा है, अभी लाने, अभी लेफ्ट पे लाओ, लेफ्ट पे लाओ, वो चेंज करो. चेंज करने जाओ तो क्या हुआ? अभी उस पर बढ़ गया. हाँ अभी इस पे लाओ, कोशिश करो दोनों पे इक्वल हो. अभी जो आपने किया ना, सचमुच, हाँ प्लीज सिट डाउन, अभी जो आपने किया दैट वॉज अवेयरनेस. अभी तक से आपको खड़े करे, सवेरे एक्सरसाइज के लिए, जुम्बा करने के लिए खड़ा किया, आपको मालूम नहीं था पैरों में क्या हो रहा है. रिसेट अब ध्यान देने लगे कि एडी में वेट ज्यादा है, आगे है, यहां है, क्या है, लाइक दैट पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब भी टाइम मिले, अभी सारा समय पॉसिबल नहीं है, मगरी थोड़ा भी अभी ना देखो, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम, क्यों पता है, क्योंकि बोलते कोई काम नहीं, परंतु ऐसी कुछ ऐसा ही कुछ काम परमानेंट बना दो कि जब भी टाइम मिले तो मुझे अवेयरनेस को लाना है कि मैं कैसे बैठा हूं, बैक में क्या कर? देखो अभी अभी कराता हूं, अभी जैसे बैठे ना ऐसे बैठे रहो जैसे बैठे हो वैसे बैठो। अभी सिर्फ ध्यान दो कि बैक में क्या फील हो रहा है, पैरों में क्या फील हो रहा है, हाथ में, शोल्डर में, इधर किया ओके। अभी थोड़ा अंदर बैठो, कुर्सी के अंदर बैठो अच्छे से, दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखो आराम से, हाथ को ऐसे मोड़ दो, देखो कैसे बैठने का शोल्डर को भी ऐसे करके रिलैक्स कर दो, चेहरे को भी थोड़ा हल्का करो, देखो इज इट बेटर देन बिफोर, हाँ पहले से अच्छा है। तो आपको पहले अवेयर नहीं था, पहले भी आप बैठे थे, परंतु अभी कराया तो पता मेरा थोड़ा सा हो सकता है 2% का फर्क पड़ा है, परंतु वो फर्क है। इसलिए अवेयरनेस की एवरीथिंग प्रैक्टिस जो बहुत बड़ी है तो वह है अवेयरनेस। हमें उषा बहन ने ना एक 15 मिनट की कहानी सुनाती है कि अवेयरनेस मीन्स क्या है, वो भी अच्छा ही है। ओके नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो इमोशंस की बात है ना, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टू फॉरगिव एवरीथिंग एंड देन देयर कैन बी लव। सारे ना प्रॉब्लम दो प्रकार के हैं। अभी वापस खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, एक एक कोई भी भाई यहां जाओ, कोई कम बड़ी कम यार, वन पर्सन, आप वन जेंटलमैन प्लीज कम कम ऊपर आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ, कोई भी एक जन आओ, डर लगता है उन्हें आ गया अभी तो। अच्छा देखो हाँ, एक एक पार्टनर बनाओ, हाँ एक एक पार्टनर बनाइए, हाँ कोई भी बनाइए बनाइए, हाँ ऐसे पार्टनर बनाइए, पार्टनर से हाथ मिलाओ, हेलो हाँ रुको रुको भी कुछ कर लेगा। देखो इमोशनल हीलिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने देखी है, मैंने शायद 50,000 पेशेंट देखे होंगे, तो ये दो प्रॉब्लम देखे हैं। एक तो ना हमारे में ये होता है कि भी मैंने इनसे कुछ बुरा व्यवहार किया है ना, मैंने उन पर उनको गुस्सा किया, नीचा दिखाया समहाउ, और वो अभी मुझे वो बात खाए जा रही है कि मैंने दूसरे के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया कुछ ना? उसका सबसे वो इमोशन को हील करने का तरीका क्या है मालूम है, करेंगे बोलते नहीं, मतलब यहां ही नहीं घर जाके भी करना है, इधर तो झूठ मूठ का होने वाला है, तो इधर भी करो फिर जाके भी करना, आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। कभी बोले कि मैंने किसके साथ बुरा पहले पास्ट में किया या अभी किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको सॉरी बोलो, माफी मांग लो। हाँ ये गलत नहीं होते हैं, देखो कैसे करेंगे ना, प्लीज फॉरगिव मी आई मेड अ मिस्टेक, बोलो अच्छे से नहीं बोला अभी पर सच में, और फॉर रीजन ना, अब ये प्रोग्राम पूरा होना तो अपना फोन करना और बोलना कि बच्चे को बोलना मैंने तुम्हारे पे कल गुस्सा किया था ना, प्लीज फॉरगिव मी, उसे तो हंसने लगेगा। ओके और दूसरा क्या है पता, बहुत बड़ा मैं कराने भी वाला हूं आपको मेडिटेशन में, दूसरा है कि किसी ने आपका विश्वासघात किया है ना, किसी कुछ कोई भी आपको अन्याय हुआ, कुछ और बुरी चीज हुई, और फिर उसका वो इमोशन को भी हील करने का बहुत अच्छा तरीका है। हाँ सब करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि है ना माफ कर दो, एक तो माफी मांगनी है और दूसरा माफ कैसे करेंगे है ना, मैंने गलती होगी प्लीज मुझे माफ कर दो करो कर देखो, जब तक गले नहीं मिलेंगे छोड़ूंगा नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ जादू की जप्पी है ना। अच्छा ओके सिट डाउन। हाँ या या प्लीज, हाँ देखो बेटा 40 सुबह जादू स्टेज। मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके चलो। देखो ना, मैं तो बहुत बोलता हूँ, मेरे ऐसे ग्रुप के सेशन होते 8-8 घंटा एक ही बंदा, इसलिए मुझे ऐसे 1.5 घंटा बोलो ना तो लगता है तो बहुत टाइम कम है। तभी कोई बात नहीं, मुझे बोला गया कि टाइम हो गया है, तभी यहाँ बट वील डू मेडिटेशन है ना, थोड़ा पावरफुल। इसी पर आते हैं अभी, इसी का एक बहुत ही पावर नहीं, फिर क्वेश्चन आंसर भी है ही। इसके बाद जो सेशन है मैं भी बैठने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन क्या 16 आना। ओके अभी 16 आना बता देता हूँ। देखो हमको फोन आता है ना, ये पेशेंट के फोन आते हैं, क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट से ही पेशेंट देखते हैं, इसे देख भी नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो जब भी फोन आता है ना तो हर पेशेंट पूछता है कि फीस कितनी है ना, क्योंकि उसको तैयारी करके आना है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टरों की अजब सी फीस हो गई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक फिजिशियन है 17,000 रुपये, मेरे बोला कमाल है क्या करते हो तुम। वो हमारे टीचर थे, फिजिशियन है, ऑपरेशन का तो हो सकता है, चलो ऑपरेशन करना है आप बोलो 20,000-50,000, लेकिन ये तो खाली एक टाइम देखेंगे आपको 10 मिनट और 17,000 रुपये और देते हैं लोग ने, मतलब जो ठीक नहीं हो रहे हैं ना उनके पास जाते। ओपी कपूर एक बड़े डॉक्टर है, इज वेरी सीनियर पर्सन, तो मतलब खाली ये बोल रहा हूँ। तो ऐसे मेरी फीस क्या है मालूम है, 16 आने पे बोला। मेरी फीस क्या है, हाँ अच्छा मालूम पड़ गया, 16 आना मतलब क्या, 1 रुपया नहीं है वो, 1 रुपया तो रिक्शा वाला भी छोड़ देता है ना, रिक्शा वाला भी 1 रुपया छोड़ देता है। तो 16 आना मतलब क्या, क्या 16 टाइम आना है, 16 बार आना। हाँ तो 16 बार आएंगे यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे आना मुश्किल भी है, आप बोलेंगे हम तो आएंगे, आप बुलाएंगे। हम तो आ जाएंगे साइटर हो, लेकिन 16 आना फीस कहाँ देनी है पता है, नहीं हमारे सेंटरों पर, जहां से भी आप आए हैं सब जगह पर। ब्रह्मा कुमारीज का जो मैंने देखा ना सबसे अच्छा, छोटे से अभी बोरीवली में हमारे 4-5 सेंटर हो गए, फिर दिव्या में 6 हो गए, अभी तुम पास क्यों करते हैं, बोरीवली छोटा सा है अभी 5-6 सेंटर हो गए, क्योंकि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है भाई, 0.5 किलोमीटर में आपको सेंटर मिल जाएगा। छोटे छोटे गांव में भी सेंटर्स है, क्यों बनाए, क्योंकि लोग जा सके। और दूसरा इफेक्ट है, हमारे एक बड़े भाई थे जगदीश चंद्र हसीजा, ट्रिमेंडस, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम, मतलब यू कैनॉट वर्क विथ हिम, उसके साथ काम करना ना भागना पड़ेगा। बट वी हैव लर्न, आज लोगों को लगता था कि भी जगदीश भाई के साथ काम नहीं कर सकते, बट मैंने कहीं को मुझे लगता है कि तभी हम सीखे जब जगदीश भाई के साथ 2-3 कॉन्फ्रेंस में काम की और जब भागा दौड़ी हुई तब भी हमको सीखने को मिला कि भी हमारी, और खुद भी करते थे, ऐसा नहीं खाली ऑर्डर कर रहे हैं, वो खुद करेंगे, सवेरे उठ के लिखा फिर हमको देंगे, टाइप करके लाओ, समझे। तो ये इसलिए मैं आपको बताता हूं, जगदीश भाई की बात तो इसलिए याद आई कि जगदीश भाई कहीं फॉरेन में भी जाके बहुत अच्छे लेक्चर देते थे, वो कहीं विदेश में गए थे और उनका सेमिनार फ्री में था, और साथ में भी नाम नहीं देता हूं, एक स्वामी है भारत के ही है, उनका भी सेमिनार था, उसमें काफी फीस थी, फिर वो लोग दोनों मिले तो वो स्वामी जी ने जगदीश भाई को बोला बहुत बड़ी गलती करते, उन्होंने कहा कि भी हमारे भारत में बेचने को क्या है, ये योगी हमारे पास बेचने को, यहां आके फीस लेने की है ना। यही प्रश्न दादी प्रकाश मणि जी को भी पूछा गया एक बार कि भी आप फीस क्यों नहीं लेते, तो दादी जी ने कहा, दादी को ये भी बोला कि देखो वैल्यू नहीं आपके योग की क्योंकि आप फीस नहीं लेते, जैसा था जितनी ज्यादा फीस उतना बड़ा डॉक्टर, ये बोला ना 17,000 फीस तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो दादी जी ने बोला हम लोग फीस इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये तो भाई क्या कहेंगे कि विसंतों की देन है, परमात्मा की देन है, कोई मेरा ज्ञान नहीं है और विस्डम के ऊपर प्राइस नहीं लिखनी चाहिए। कपड़ा बांटना है उस पर प्राइस ही लिखो, लेकिन अभी जो आप बांट रहे हो तो विस्डम को बांट रहे हो, उस पर प्राइस नहीं लिखनी चाहिए। तो इसलिए ना ये फ्री है, 16 आना देना है, लेकिन फ्री है तो 16 बार जाएंगे। चलो 16 आना नहीं देंगे तो भी चलेगा, 8 आना तो देंगे ना, कम से कम 8 आना कौन कौन देगा, जब थोड़े लोग आ छूटा धीरे धीरे उठा। चलो बहुत अच्छा, मैं ताली ले जाता हूं। तो बात यही थी कि भाई ऐसे नहीं तो ना होगा नहीं। अब बहुत सारी चीज आप प्रैक्टिकल में नहीं करो मालूम नहीं पड़ती, यहां 3-4 दिन में आपको समझ में पूरा नहीं आएगा। भले अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा है, बहुत स्वच्छता है, सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, परंतु थोड़ा कम से कम जो कभी ये भी ना स्टैंडर्ड रिप्लाई है, कोई भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और यह प्रश्न पूछो कि यह दवा कितने समय में काम करेगी, तो स्टैंडर्ड रिप्लाई है 8 वीक्स। तभी मेडिटेशन भी आपके क्या प्रभाव डालेगा वो चेक करने के लिए 8 सप्ताह तो देने चाहिए ना। अच्छा चलो अभी मैं थोड़ा आपको कराता हूं, कर सकते हैं ना। ओके यस, साथिक कंफर्टेबली, ये विजुअलाइजेशन है, बहुत अच्छा हीलिंग का ही है, इमोशनल हीलिंग का ही ये बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन है। हाँ, कमर को सीधी रख के बैठो, जितना हो सके अंदर बैठिए, दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा दूर रखिए, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए, कंधे को भी रिलैक्स करिए। बल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप में से बहुतों को प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन लेने के बाद अब अपने विचारों को ही देखो कि मन में क्या विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप मन के विचारों को देखते हो तो विचारों की गति शांत हो जाती है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं, यह सोचिए ये सारा शरीर जो सिर्फ एक वस्त्र है, मैं एक दिव्य आत्मा हूं और यह शरीर केवल एक वस्त्र है, जैसे ये भाव होता है न्यारेपन का अनुभव, सारा शरीर हल्का हो रहा है, सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है, आप हवा में तैर रहे हैं। सचमुच सोचिए शरीर एकदम हल्का हो गया है, आप हवा में तैर रहे हैं। ये कल्पना करिए कि भी आप उड़ भी सकते हैं और उड़ते उड़ते आसमान में जाते हैं। उड़ते उड़ते ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अब एक पहाड़ी के बेस में आ गए हैं, वहां देखते हैं कि सवेरे का समय है, बहुत शांति है, शीतलता भी, आप भी प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं। उसी में आप देखते हैं कि सामने श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध पुरुष आपके सामने आ रहे हैं, जैसे आप उनको देखते हो तो उनके आभा मंडल से ही आपको लगता है कि इनके पास से मेरे सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, मेरे सारे इमोशंस हील हो जाएंगे। आप उनके नजदीक जाते हैं तो उनके आभा मंडल का आप पर प्रभाव पड़ता है, वो आपके सर पर उनका हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही आशीर्वाद देते रोम रोम में वो वाइब्रेशन फैल जाए, फील करो रोम रोम में वो वाइब्रेशन फैल जाते हैं, एकदम हल्का लगता है। ये संत आपको प्रसाद खाने के लिए देते हैं, आप धीरे धीरे प्रसाद खाते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है कि जैसे उसमें शक्ति का संचार है। फिर आप उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताते हो कि आपकी तकलीफों के बारे में बताते हो कि इसका क्या समाधान है। वह संत आपको कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ। आप जैसे उनके पीछे पीछे जाते हैं तो और रिलैक्स हो जाते हैं, और शांत हो जाते हैं, और एक गुफा में जाते हैं। जैसे जैसे आप उनके पीछे पीछे गुफा में जाते हो आप अपने अंतर मन की गहराई में जा रहे हो और अधिक से अधिक रिलैक्स हो रहे हो, और अंदर में जाते हो तो ऐसा ही एक बड़ा हॉल है। उस हॉल में स्टेज पर एक कुर्सी सजाई हुई है, संत आपको उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अपनी शुद्ध बुद्ध को खो जाते हो। थोड़ी देर के बाद जब आप जागृत स्थिति में आते हो तो आप देखते हो कि राइट साइड में कुछ लोग बैठे हैं। उनको देखने से आपको लगता है कि सब ऐसे लोग हैं कि जिनको मैंने दुख दिया है, मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। संत आपको बताते हैं कि वो आप उनसे जाकर के एक एक से माफी मांग लो, आप जाकर के एक एक से माफी मांग लेते हो। वो भी तभी आपको माफ कर देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भी हमको तो याद भी नहीं कि तुमने ऐसा किया था, और आपको भी खुशी होती है कि इन सभी ने मुझे माफ कर दिया है और मैं अब पूरी तरह से मुक्त हूं। फिर आप दूसरी ओर देखते हैं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, विश्वासघात किया है। जब उनको आप देखते हो तो संत बताते हैं कि इन सबको माफ कर दो। उनको आप कहते हैं नहीं नहीं इनको मैं कभी माफ नहीं करता, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फिर भी वह संत आपको बताते हैं कि उनको माफ करने में ही आपका भला है। अगर आप पूरी तरह से शांत फ्री हल्के स्वस्थ होना चाहते हो
तो बिना कोई शर्त के उन्हें माफ कर दो, कोई अपेक्षा नहीं रखो, वही आपको बांधे हुए है। समझाने पर आप उन सबको अनकंडीशनली माफ कर देते हैं, क्योंकि आपकी समझ में आ गया है कि इसी में मेरा भला है। जैसे ही आप उनको माफ करते हो, एकदम लाइट हो जाते हो और वापस आकर के अपनी कुर्सी पर बैठते हो, एक बहुत ही अनोखा अनुभव हो रहा है, एकदम लाइट, एकदम पीस को। अब आप सामने देखते हो तो एक दिव्य प्रकाश आपके सामने, एक प्रकाश का पुंज है जिससे लेजर बीम की तरह वो किरणें निकल के आपके पास आ रही है, आपके मस्तिष्क पर वह किरणें जिसे वेव के रूप में फैल जाती है, अणु अणु वह किरणें फैल रही है, आपके सारे मस्तिष्क को एकदम स्वस्थ कर देती, आपकी आंखें चेहरा हल्का और स्वस्थ हो गया है, किरणें दोनों हाथों में भी फैल रही है, दोनों हाथ भी आपके एकदम हल्के और स्वस्थ हो रहे हैं, किरणें चेस्ट में फैल रही है, आपके लंग्स और हार्ट एकदम हेल्दी हो रहे हैं, रेज आपके पेट में फैल रही है, पेट की सभी मांसपेशियां सभी अंग एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, दोनों पैर भी स्वस्थ हो रहे हैं, आप इमोशनली और मेंटली हील हो गए हैं। यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी जब तक आप 100% ही हो जाए। बहुत अच्छा लगता है, आप उपवास से बाहर आते हैं, वो संत को वापस मिलने का वादा करते हैं और फिर वापस उड़ते उड़ते अपने स्थान पर आ रहे हैं। पर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। धीरे से आंखें खोलिए, आसपास के वातावरण से ओरिएंट हो जाइए। ओम शांत शांत।